ये आकाशवाणी है। अब आप फरहता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागरिक विमानन से संबंधित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री मोदी सदस्य देशों से दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने का ऐलान करेंगे। दिल्ली घोषणा पत्र विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक दूरदर्शी रोडमैप है। नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया था। श्री नायडू को एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने वर्ष 2035 तक सालाना 3.5 अरब यात्रियों को समायोजित करने के लिए एशिया प्रशांत विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश का आह्वान किया है। श्री नायडू ने इस बात पर बल दिया कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक विमानन कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को 25% तक ले जाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इस कार्यक्रम पर कुल 70,125 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 65,005 मिलीमीटर लंबी सड़कें बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे अब तक सड़क से नहीं जुड़ने वाली 25,000 बस्तियों को नई कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इसके अंतर्गत 40 करोड़ श्रम दिवसों के लिए रोजगार सृजन भी होगा। सभी मौसम में काम करने वाली सड़कें दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास और परिवर्तन लाने में प्रेरक भूमिका अदा करेंगी। बस्तियों को सड़कों से जोड़ते समय निकटवर्ती सरकारी शैक्षिक स्वास्थ्य संस्थाओं और विकास केंद्रों के साथ संपर्क कायम करने का प्रयास किया जाएगा ताकि स्थानीय लोग इनसे लाभान्वित हो सकें। कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क संपर्क योजना को पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,435 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा ई बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को अनुमति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना में वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें परिचालित की जाएंगी। इन ई बसों को 12 साल तक संचालित किया जाएगा। योजना में ई बसों के परिचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी और जीवाश्म ईंधन की खपत भी कम होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौसम पूर्वानुमानों और जलवायु संबंधी जानकारी में अधिक सक्षमता हासिल करने के लिए मिशन मौसम योजना को मंजूरी दे दी है। ये योजना 2 वर्षों में 2,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से कार्यान्वित होगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मिशन मौसम से देश में मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे अत्यधिक सटीकता से मौसम और जलवायु संबंधी जानकारी प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय वायुसेना जोधपुर में कई देशों के साथ मिलकर अपने सबसे बड़े युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित कर रही है। इस अवसर पर वायुसेना भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडेक्स में भी लगाई जा रही है। 14 सितंबर तक आयोजित होने वाले प्रदर्शनी में विभिन्न उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के साथ रक्षा उद्योग की भागीदारी रहेगी। इसमें मित्र देशों और भारतीय लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन विभिन्न श्रेणी के निजी उद्योगों सहित भारतीय विमानन उद्योग से संबंधित प्रतिभागियों से मिलने और संवाद करने का अवसर मिलेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा। मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने रोहताश जांगड़ा को सिरसा विधानसभा सीट से टिकट दिया है, जबकि कुंवर सिंह यादव महेंद्रगढ़ से और सतीश फागना एनआईटी फरीदाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे। चीन में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत आज अपने चौथे मुकाबले में दक्षिण कोरिया के साथ खेलेगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:15 से खेला जाएगा। कल भारत मलेशिया को 8-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। भारत 9 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।